नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाव अभियान अभी भी जारी है। सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा है और पाइप को धकेलने के लिए ऑगर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। अब तक करीब 2 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने बताया, कल रात रेस्क्यू बहुत अच्छा हुआ, हम 50 मीटर पार कर चुके हैं, अब लगभग 5-6 मीटर जाना बाकी है। कल रात हमारे सामने कोई बाधा नहीं थी, ये बहुत अच्छा और सकारात्मक लग रहा है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए तीसरी कार्य योजना पर भी काम हो रहा है। तीसरी कार्य योजना का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब टनल में डाले गए पाइप पुश करने का प्रयास सफल नहीं होगा, तो रैट माइनर सुरंग में 1 से 1.5 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। इसके बाद इस स्थान पर एक विशेष सीमेंटिंग स्प्रे किया जाएगा ताकि यहां से मलबा नीचे ना गिरे। फिर ड्रिफ्ट बनाने के लिए बाहर पाइप को 10 से 12 इंच के 3 लंबवत टुकड़ों में काटकर पाइप के भीतर काम कर रहे कार्मिकों तक भेजा जाएगा, जो इन्हें एंगल वेल्ड कर पाइप के अग्रिम सिरे में जोड़ेंगे। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकती है। पिछली सुनवाई में ASI ने कोर्ट से 10 दिनों का समय मांगा था। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने आज रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। दिल्ली की वादी राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का ASI से वैज्ञानिक सर्वे कराया। जिला कोर्ट ने ASI को सर्वे रिपोर्ट 17 नवंबर तक सौंपने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में ASI अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी। तर्क दिया कि सर्वे के आधे से अधिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कोर्ट से कहा गया कि हैदराबाद IIT से आई GPR मशीन से जमीन के अंदर भी सर्वे और जाँच की गई थी, इसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे लेकर आपत्ति जताई गई। कोर्ट ने ASI को 10 दिन का और समय दिया। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। राहुल गांधी की टिप्पणी के जवाब में सोमवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमलावर होते हुए कहा, अरे राहुल गांधी, बोलने से पहले सोचो, अब मुझे बोलते हो ऐसे कि सुना ऐसा। राहुल गांधी, आप 50 साल के हो गए हो, अकेलापन आपको तंग कर रहा होगा। जब आप अकेले हैं, 50 के हो गए हैं, ये आपका फैसला है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में हम कोई दखल नहीं देते, मगर जब आप हमको बोलते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ा तो उसे छोड़ते नहीं। ओवैसी ने आगे कहा, 50 साल के आप हो गए हैं, आपकी ज़ुबान पर जो यार यार आ रहा है ना, वो कमी आप में है, किसी को ढूंढ लो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पूरे दिन बादल छाए रहने के बाद शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही NCR के शहरों नोएडा, गाज़ियाबाद में भी हल्की बारिश हुई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी शाम को हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई। हल्की बारिश से लोगों को प्रदूषण से राहत तो मिलेगी, लेकिन सर्दी के सितम का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं ख़राब मौसम की वजह से दिल्ली आने वाली 9 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। नोएडा और गाज़ियाबाद में गरज चमक के साथ हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। IMD ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली के कई स्थानों के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 3 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी। इसके अतिरिक्त IMD ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली, करनाल, राजौंद, असंध, सफ़ीदो, जींद, पानीपत के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के बीच जल्द ही भारत जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। इससे भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, जबकि जापान की तरफ से 2+2 वार्ता में जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री योको कामिकावा शामिल होंगे। हालांकि अभी तक इस बैठक को लेकर किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इस बार 2+2 की इस उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिससे दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर व्यापक आधार पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक पर इसके अलावा इसराइल, हमास और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए चुनौतीपूर्ण हालात का मसला भी बातचीत में प्रमुखता से शामिल रहेगा। 2+2 की बैठक से इतर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच एक अहम द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें द्विपक्षीय सामरिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की जाएगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।